और अभी अजान के बाद किसी को कंप्यूटर पे बैठने की इजाजत नहीं, इधर भी दो जगह लगा दीजिए, दाखिस्ता के अंदर भी लगा दीजिए, किसी को कहीं पे भी इदारे में कहीं काम की इजाजत नहीं, अजान मस्जिद बस जाइए। दुनिया वालों को क्या समझाएंगे, दुनिया वाला आता है वो मीटिंगें छोड़ दे, दुनिया वाले फिर बेहतर है ना हमसे, आते हैं सबर इख्तियार करते हैं, बड़े बड़े चौधरी बैठे हुए होते हैं बाहर से मीटिंगों के लिए बैठे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोबत की वजह से खड़े हो जाते हैं जी नमाज के लिए जाना। हजरत ने सुनाया था मैंने आपको चाइना में गए और वहां पर जनाब वाला नमाज को अकुआ होता है, दो तीन दिन के बाद वो जो चाइनीज था बड़ा वो कहने लगा कि आप दूसरे मुसलमान तो नहीं जा रहे, हमारे ऊपर तो लाजिम है ये, वो जाए ना जाए। दसवें दिन वो मुसलमान हो गया इस बंदे के अमल को देखते कि आज नमाज को वहां तो अजान नहीं होती, वहां तो टाइम देखना पड़ता है, टाइम देखते ही उड़ जाता है। और एक हम मदरसे में रहते हुए तुलबा को ये देखता हूँ आगे पीछे सबों में बैठे हैं, खानखा में वक्त लगाने वाले फजर की नमाज पीछे बैठते हैं, तुम यहाँ वक्त लगाने आए हो, बेवकूफ बनाने आए हो उसको, आगे होके बैठा करो भी, पीछे लोग आने वालों के लिए जगह, मौलाना आगे आ गया, पंखा चला दें भाई आहिस्ता। मदरसे सबक हो रहा है, उस्ताद साहब सबक पढ़ा रहे हैं, तो अजान के बाद सबक की क्या बात रह जाती है, अजान हो गई अब नमाज पढ़ो बस, अब सिर्फ अब कोई काम नहीं है, अब सिर्फ बड़ा फरीजा मुतवज्जे हो चुका है वो नमाज है। इतना अफसोस होता है तुलबा रात को रुकते जी, सुबह दूसरी सब में तीसरी सब में चौथी सब में नजर आते, शर्म नहीं आती कि भाई आपको तो पहली सब में नजर आना चाहिए, यहां रहते भी बेवकूफ बना रहे हैं आप अपने आप को भी हमको भी। तड़प और तलब ही नहीं पैदा हो रही है, कल फजर आज फजर में भी मैंने ये आज या कल आज ही आके पहले से बैठा हुआ है लेकिन तीसरे सब में बैठे, तो फिर ये पहली सब किस लिए, तीसरी सब इसलिए ताकि सलाम फिरे और भागे, तुलबा को असर की नमाज में तो सब ज्यादा पीछे पड़ेंगे ताकि सलाम फिर के भाग जाए। पाई लोग पूछो ना घर कैसे बनाए, तो मैंने पाई पाई जोड़ के घर बनाए, तो मैं पाई पाई जोड़कर जो है ना अमाल की पाई पाई जोड़कर जन्नत का घर नहीं बनाना चाहिए, कितनी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन नहीं है दही से, बाद लोग समझते हैं हम तो शेख के साथ हैं, सही है, कोई मसला नहीं है भाई, भाई क्या मतलब है, मैं इन चीजों से खुशी नहीं होता हूँ, आप मेरी जूती उठाएं मुझे क्या खुशी मिली, आप मुझे पहली सब में नजर आए, आप मुझे कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए, सही है जी, हर जगह अल्लाह का हुक्म को पूरा करते हुए नजर आए, बस बहुत अच्छी बात, खुशी इन चीजों से होती है, आप हदिया दें क्या खुशी हुई, खाया पिया खत्म, असल खुशी तो उस तालिब इल्म को देख के, उस मुरीद को देख के, उस औलाद को देख कर होती है जो औलाद जो है ना नबी के तरीके पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, अज़वाज मुतहरात गवाही देती है ना, जैसी अजान होती तो आप बिल्कुल बदल जाते, ऐसे हो जाते जैसे हमको पहचानते नहीं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, इसकी जरूरत नहीं, उठा लो, बहुत तकलीफ होती है, अहमियत ही पैदा नहीं हो रही है, नमाज की अहमियत पैदा नहीं होगी, दिन के किस शोबे की अहमियत पैदा होगी, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, नमाज अच्छी निकली सारे अमाल अच्छे हो जाएंगे, सारी चीजें सीधी होंगी। एक दिन मौलाना नजीर साहब बयान में नहीं बताया था कि नजर की हिफाजत कैसे नमाज के अंदर, बयान में सुबह हम खड़े होते अल्लाहु अकबर कहाँ देखना है, सजदे की जगह पर नजर कहाँ झुकी हुई, ठीक है जी, रुकू में गए तो कहाँ, सही है जी, फिर कौमे में खड़े हुए कहाँ, सजदे की, सजदे में गए तो कहाँ, फरमाई ये नजर की हिफाजत कराई जा रही है। मौलाना नजीर साहब ने माज़ बिन जबल में सुबह बयान करते हुए ये बात कितनी प्यारी बात बताई, तो ये हमें नमाज जब ही कहा गया अद्दुस सला कहीं आया, अकीमुस सला आया, اقامت صلات سے ہمارا اقامت دین کا تعلق ہے، اور جہاں اقامت دین ہوتی ہے وہاں قیامت دنیا خود ہو جاتی ہے. جس کا دین اچھا ہو جائے اس کی دنیا، کیونکہ دین کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا ایک ڈھنگ ہے. دین کیا ہے بھائی؟ دنیا میں رہنے کا ایک ڈھنگ ہے کہ بھائی اگر شادی کرنی ہے کس ڈھنگ سے کرنی ہے، بیاہ شرح کرنی ہے تو کس ڈھنگ سے کرنی ہے، صحیح ہے، معاملات کرنے ہیں، لین دین کرنا ہے تو کس ڈھنگ سے کرنا ہے. تو دین کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے اپنے قانون بناتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ زندگی دے دیا کہ دنیا کو اس ڈھنگ سے گزارو، یہی دین ہے. بیوی سے ایسے رہو، بچوں سے ایسے رہو، بڑوں سے ایسے رہو، یہی ہے. اس لیے اقامت صلات اقامت دین کا ذریعہ بنتی ہے، اور اقامت دین خود بخود اقامت دنیا کا ذریعہ بن جاتا ہے. جس کا نماز صحیح ہوگی اس کا دین صحیح ہوگا، جس کا دین صحیح ہوگا اس کی دنیا بھی صحیح ہوگی. لین دین کے اندر بھی ایک نمبر آدمی ہوگا، ایک نمبر چور نہیں ہوگا وہ، اس کا مارا اس کا مارا، ہاں دے رہا ہوں ابھی، روز فون کر بھائی پیمنٹ، ہاں ابھی لگا رہا ہوں، ابھی شام کو لگا رہا ہوں. چور ہیں، چوریاں کرتے ہیں معاملات کے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اللہ کرے ان کے دل میں دین کی محبت ہے تو یہاں آ رہے ہیں نا، ورنہ کرکٹ کے میدان میں بھی تو جا سکتے ہیں. اس آنے پر بھی شکر ادا کر لو، اس آنے پر بھی. میں کچھ عرصہ دارالعلوم کراچی میں پڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا وہاں. کسی ہر دن نا، یہ 1992 کی بات بتا رہا ہوں، ہر دن کسی نہ کسی اللہ والے کا بیان ہوتا تھا. اگر مفتی رفیع صاحب کا کسی دن ہوتا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا کسی دن، اس وقت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اس وقت ان کا بیان ہوتا تھا، اور مفتی عبد الرؤف صفوی صاحب کا بیان ہوتا تھا. لیکن میری ان آنکھوں نے یہی منظر دیکھا کہ جناب طلبا میدان کی طرف جاتے تھے اور باہر سے پینٹ شرٹ والا ٹائی لگائے ہوئے بھاگا چلا رہا ہے، جی حضرت کی مجلس میں جانا ہے. میں کبھی سوچتا تھا کہ یہ خرج الحی من المیت و یہ خرج المیت من الحی، کیونکہ شیخ الاسلام صاحب ہمیں مل گئے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمیں مل گئے، لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت سے مسافہ ہی ہو جائے. حضرت مجھے ایک نگاہ دیکھ لیں میرے پاس، اور ہم کہتے ہیں ہر وقت تو دیکھتے رہے تھے شیخ الاسلام صاحب، اہمیت ہی ختم، اہمیت ہی ختم. مکے والوں نے قدر نہیں کی، قدر کس نے کی؟ مدینے والوں نے. آج مدینے کا مقام دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے. تو یہ جو قدر کرے گا اللہ اس کو نوازیں گے میرے پیاروں، جو قدر کرے گا نا اس کو اللہ نوازیں گے. اپنی اپنی نمازوں کی فکر کریں، نمازوں میں اقامت صلات کا حکم، اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. بس اٹھے وضو کر رہے تب، جب بس ایک منٹ رہ جاتا ہے نا، ہمارے مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کو بھی عادت ہے ایک منٹ پہلے آئے گا. نماز اذان کے ساتھ مسجد آنا ہی نہیں، جبکہ ہم نے اپنے اکابر کو ہمیشہ دیکھا اذان کے ساتھ مسجد میں موجود ہے. جب میں اذان کے ساتھ مسجد میں موجود نہیں، مجھے میرا بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار ان کی کبھی تدبیر اولا فوت ہوتی ہے، میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے بس سلام پھیرتے ہیں، سنتیں بھی نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے ہیں. آپ بتائیے اس کے دل کے اندر میری کیا اہمیت پیدا ہوگی، وہ دین کو کیا سمجھے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 34 دفعہ، اللہ اللہ کتنی دیر لگتی ہے؟ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ. لیکن ہمیں پائی پائی جوڑ کر کاروبار کرنا ہے، پائی پائی جوڑ کر اپنے جو ہے گاڑی خریدنی ہے، پائی پائی جوڑ کر مکان بنانا ہے دنیا کا، لیکن یہی اعمال کی پائی پائی جوڑ کر جنت میں گھر نہیں بنانا. جنتیوں کو جنت میں حسرت کس بات کی ہوگی؟ ان اوقات کی ہوگی جو غفلت میں گزر گئے. میرے حضرت والا ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں، میرے شیخ میرے مربی میرے محسن، آگے ہو جاؤ، پیچھے جگہ نہیں ہے، آرام سے آپ نہیں آنا، آگے آؤ، پیچھے والی لائن والے آگے آتے چلے جاؤ، اور آگے آ جاؤ، ان کے پیچھے والا آگے جائے. میرے حضرت والا یہاں ایک بات فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں ذکر کیا کہ جنتی کو کب کس بات پر حسرت ہوگی؟ غفلت کے، گناہ کے اوقات میں. یعنی جو غفلت میں گزرے ذکر اللہ سے، گناہ میں نہیں گزرے تھے، تو گناہ کے اوقات پہ کیا حالت ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کا نماز سے دل لگ گیا، بھائی میں امام ہوں، مجھے تو کوئی، میرا کب پتہ چلے گا؟ جب میں اپنی غیر جگہ جاؤں گا، غیر جگہ جاؤں گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ بھائی اہمیت کتنی ہے، اہمیت کتنی. کیونکہ آپ میری اولاد کی مانند ہیں، اور استاد کا، شیخ کا، والد صاحب کا، दिखलावा हमारे इखलास से बड़ा होता है। कल एक जगह जाना था मुझे, कोई मामलात थे, मैंने कहा भाई पहले नमाज पढ़ेंगे ईशा की फिर कोई बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ईशा की नमाज भी मिलवाई। जब मैं पहुंचा मस्जिद भरी हुई, 7:40 पे पहुंचा, 7:45 पे नमाज, पहले सब गई। अब मैं रास्ता था थोड़ा थोड़ा, होते होते किसी को लांगना नहीं चाहिए, रास्ता हो तो निकलते निकलते मैं दूसरी सब में पहुंच गई। और जब सब खड़ी हुई तो पहली सब में खुद ब खुद जगह बनी, अल्लाह ताला ने मुझे पहली सब भी अता फरमा। जब तड़पोगे ना तो मिलेगा, तड़पे बगैर नहीं मिलता, तड़पना पड़ता है। दुनिया वाले दुनिया के पीछे कितना भागते हैं, पैसे के पीछे कितना भागते हैं, उनको उस पैसे की और दुनिया की कदर है। मुझे और आपको, मेरे पास और आपके पास जो आमाल की नेमत है, मुझे आपको उसकी कदर ही नहीं। सहाबा तो दौड़ रहे हैं ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मालदार सहाबा हैं ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हमसे आमाल में आगे निकल गए। हमें भी कोई अमल, हमारे पास तो माल नहीं है, खर्च नहीं कर सकते। तस्बीहात बता दें, इसी वजह से नमाज के बाद की तस्बीहात तस्बीहात फुकरा है, तस्बीहात फुकरा। तो तस्बीहात अग्निया ने भी शुरू कर दी, उन्होंने देखा भाई ये क्या पढ़ रहे हैं भाई। तो वहां पे दौड़ किस चीज की थी, आमाल की। वफी ज़ालिका फलयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, जन्नत का जिक्र करके अल्लाह फरमाते हैं ये वो नेमतें हैं जिसमें चाहिए कि तनाफुस करने वाले, एक दूसरे से सबकत करने वाले इस जन्नत के मामले में एक दूसरे से सबकत करें। दुनिया के मामले में सबकत है, मेरी गाड़ी अच्छी वाली होनी चाहिए, नया मॉडल आना चाहिए, जरा सी खराश आ जाए तो गाड़ी तब्दील होनी चाहिए, हर साल रंगो रोगन। हमारे पास एक मिस्त्री काम करता है, कहता साल में एक दफा एक डिफेंस का घर है वहां पर मेरी दिहाड़ी लगती लगती है, क्यों भाई हर ईद पे जितने उस घर के वॉशरूम है वो उखाड़ दिए जाते हैं। वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, दुनिया जाते हैं, जहां कहीं जाते हैं नया डिजाइन देखकर आते हैं, तो वो नया डिजाइन बाथरूम में लगवाते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च करते हैं। 2012 में मेरा सफर हुआ लाहौर में, जो हमारे मेजबान थे तो वो वहां डिफेंस में रहते थे, उनका 500 गज का बंगला था। जब उस 500 गज के बंगले के अंदर हम वॉशरूम में गए तो हमारे 120 गज का घर था, इतना बड़ा बाथरूम। मैंने कहा भाई इतना कि लगे एक बाथरूम पर 10 लाख रुपए लगे, सिर्फ बाथरूम पर, मस्जिद में चलता है, जैसे आओ जिस तरह आओ चलता है, ना मस्जिदें साफ रखने की फिक्र है, मदरसा साफ रखना चाहिए, मेरी आपकी भी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप गेट से दाखिल होते हैं यहां तक आपको रैपर नजर आता है, गंदगी नजर आती है, रखनी पड़ती है तबीयतन। जब मेरी तबीयत में सफाई है तो सबकी तबीयत में सफाई आएगी, और अगर मेरी तबीयत में सफाई नहीं है, जाओ रैपर पड़े हुए हैं, चाय गिरी हुई है, डस्टबिन खुला हुआ है, एक अजीब मंजर है, दरगाह गंदी, डेस्क दे दो उस पर अपने दस्तखत शुरू कर देते हैं, इस पर लगता है जैसे सारे बैंक के दस्तखत यही होने हैं, और जैसे जाएंगे ये डेस्क से कैश करा लेंगे, लाओ 1 करोड़ रुपए लाओ, डेस्क पे लिख रहे हैं, दीवारों पे लिख रहे हैं, नहीं तो बाथरूम में जाके लिख रहे हैं, नाम क्या लिख रहे हैं, जना सहाबा जिंदाबाद, सहाबा का लफ्ज कहाँ लिखा, बैतुल खला के अंदर। कुछ पता है कि हम कहाँ पहुंच गए, हम कितनी गलीज हरकत कर बैठे, कहाँ क्या नाम लिख रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जिंदाबाद कहाँ लिख रहे हैं, बैतुल खला के अंदर, नऊज़ु बिल्लाह, अपना नाम लिख रहे हैं अब्दुल्ला, किसका नाम लिख करा है, अल्लाह का नाम बैतुल खला के अंदर, जैद जनाब साहबी का नाम बैतुल खला के अंदर, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन बस चल रही है पेंसिल, क्योंकि तबीयत में सफाई नहीं है। हालांकि ये निस्फ ईमान है, तहारत पाकीजगी ये निस्फ ईमान है। हमारे आप चले जाइए हमारे मतान क्या हाल है, हमारे हमारे मतबख का क्या हाल है मेरे भाई, जहां हमारे मकतब का क्या हाल है मेरे भाई, ठीक है, जहां पे हमारे सोने का नजम होता है उसका क्या हाल है मेरे भाई, उसका क्या हाल है, चादरें बिखरी पड़ी हुई हैं,
बस उठे ऐसे ही तैर किया और फेंक दिया किनारे पर। ये सब इस वजह से कि मेरे अंदर इकामत सलात नहीं। मेरी नमाज अगर दुरुस्त हो ना तो मेरा दीन सही होगा, मेरा दीन सही होगा तो मेरी दुनिया सही होगी हर चीज के अंदर। मैं मूजी जानवर नहीं बनूंगा। मेरे अजीज तुलबा अपने आप को जाया ना कर, और जब अजान हो जाए तो बस नमाज, अब उसके अलावा कोई दोस्ती यारी किसी से नहीं। कोई दुकान खोलकर कर को बैठ जाओगे, पड़ोस वाला दुनिया वाला होकर वो दुकान बंद करके नमाज के लिए जा रहा होगा, और मौलवी साहब तावीलात कर रहे होंगे, घर जाके नमाज पढ़ लो, घर जाके नमाज पढ़ लो, ये तावीलात करते फिरते हैं, जुमे की नमाज नहीं पढ़ते। अभी छुट्टियां हो रही है ना, अब देखिएगा शैतान कैसे नरवे मिलेगा, एक एक को उचकेगा, यहां से वहां से सबको उचक कर जनाब ऐसी तैसी करेगा। मेरे अजीज अपनी नमाजों का ख्याल कर। बड़ा अफसोस होता है कि यहां वक्त लगाने वाले तुलबा अजान के बाद किताब, अजान के बाद किताब का कोई सवाल नहीं, अजान के बाद सिर्फ जिक्रुल्ला का। अब कुरान शरीफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, पहली सब की पाबंदी करना, यहां रहने वाला चौथी सब के अंदर सुन्नतें पढ़ना नहीं। क्यों पढ़ लो भाई, पहली सब कहां जाएगी, पहली सब किसके लिए बनी है? तो मेरे भाई मैं और आप इसकी फिक्र करें, अपने दीन को संभालने की फिक्र करें। आज हमारा नमाज अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और देख लीजिए अल्लाह ने फरमाया कि इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, छोटी बड़ी बुराई से ये नमाज रोकती है। अगर मुझे छोटी बड़ी बुराई से नमाज नहीं रोक रही, अब दो अहतमालात, एक गलत है और एक यकीनी तौर पर सही है। अल्लाह का दावा, अल्लाह का वादा सच्चा है, हाँ, लेकिन मेरी नमाज ही इस काबिल नहीं है कि वो मुझे, तो मैं सोच लूं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, पांच वक्त पढ़ रहा हूँ, सबसे अव्वल में ही पढ़ रहा हूँ, तकबीर उला से ही पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं गुनाह से नहीं बच रहा। क्या मतलब है इसका? कि मेरी नमाज के अंदर वो कैफियत नहीं है जो जैसी नमाज होनी चाहिए। क्योंकि अगर नमाज कबूल हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान गुनाहों की तरफ चला जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है गुनाह वाली जिंदगी से नमाज की तरफ आए, गुनाह छूटना शुरू हो, खुद ब खुद गुनाह छूटते 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 बिल्कुल पाक साफ हो जाते, इनकी नमाज कबूल है। और एक आदमी है नमाज से पढ़ता है लेकिन वीडियो में लगा हुआ है, लोगों को धोखा देता है, बेवशरा के अंदर झूठ बोलता है, चाइना का चश्मा है जनाब जापान का और जर्मनी का कहकर बेच रहा है, घड़ी चाइना की है और बेच रहा है जनाब वाला जापान की कहकर, झूठ हर चीज के अंदर झूठ। कपड़ा बेच रहा है तो नाप तोल में कमी कर रहा, सब्जी बेच रहा है तो नाप तोल में कमी कर रहा। आपको उलमा है, तुलबा है, आप जानते हैं एक कौम पर आजाद नाप तोल में कमी की वजह से आया, नाप तोल में कमी ये सबब बना आजाद पर, आजाद का। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आजाद किस लिए आया? नाप तोल में कमी। आज देने में हम 0/0 हैं। हमारे जो हमारे प्रधान हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं, मदरसों में भी उलमा भी हैं, इमाम साहब भी हैं, तबलीग में भी हैं, सही है जी, कौन सा दीन का वो शोभा है जिसके अंदर ये हजरात मौजूद ना हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विरासत देने के अंदर सबसे ज्यादा 0, बहनों को विरासत नहीं देंगे। चिल्ला लगाया हुआ है, साल लगे हुए हैं, तबलीग में वक्त लगा हुआ है, खानखाओं में जाते हैं, मस्जिद का इमाम है, लेकिन वो बहन को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं, बहन को हिस्सा देने के लिए। तो रिवाज नहीं है हमारा, रिवाज क्या चीज होती है भाई, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। एक साहब कहने लगे मैंने अपनी माँ से वादा किया था बहनों को विरासत दूंगा। भाई तुम अगर माँ से वादा नहीं करते तो क्या बहन को हिस्सा नहीं देते? अल्लाह का हुक्म है, आपको देना ही देना है। आपने अपनी अम्मा से वादा किया हो ना किया हो, आपने अपने अब्बा से वादा किया हो ना किया हो, वादा करने क्या हो, ये तो जिम्मेदारी है। आप अपने अब्बा से वादा नहीं किया तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये क्या बात है? नमाज तो फर्ज है भाई, ये तो अल्लाह का हक है, देना ही देना है, ये बंदे का हक है, देना ही देना है। मैंने अम्मी से वादा ही नहीं किया तो मैं विरासत ही नहीं दूंगा, ये क्या बात है? मैंने अब्बू से कहा ही नहीं था विरासत देने का तो मैं दूंगा ही नहीं, बरसों विरासत नहीं देते। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ रहते हैं, अब्दुल लतीफ भाई, तबलीगी जमात के माशाल्लाह पीछे गली में रहते हैं, हमारे पास यहाँ नमाज पढ़ते हैं। मुझे कहने लगे मैं चिल्ले पे गया तो वहां साल लगाए हुए और पुराने लोग मिले, पता चला जना वाला बहनों को विरासत नहीं थी, ये भी हमारे पठान है, वो भी हजरात पठान थे। जब इन्होंने बात की तो कहने लगे देखो भाई तबलीग अलग बात है, लेकिन विरासत में जो है ना हमारा रिवाज नहीं है बहनों को विरासत देने का। हम बताइए तो ऐसी तबलीग कहाँ जाएगी भाई, जब ऐसे लोगों को देखेंगे कि भाई तबलीग अलग कोई दीन है क्या, खानखा अलग दीन है कोई क्या, मदरसा कोई अलग दीन है क्या, सबके लिए एक ही दीन है मेरे भाई। इमाम साहब है तो भी उस पर विरासत देना फर्ज है, एक रेड़ी वाला है तो भी उस पर विरासत देना फर्ज है, एक बंगले वाला है विरासत देना फर्ज है, एक छोटे से 60 गज के घर में रहता है अगर विरासत है तो विरासत देना फर्ज है, जिम्मेदारी। ये थोड़ी है कि अगर मैं दीन के शोबे में हूं तो बस अब सारे गुना माफ, इसका माल हड़प किया है, मदरसा चला रहा हूं यार, मैं मदरसा चला रहा हूं ना, खानका चला रहा हूं, इतने तुलमा की खिदमत करता हूं, बहन की विरासत मारी, इनको चाय पिला दी, ये चाय भी अजाब की बनेगी ना मेरे। कल मैंने बयान में एक बात कही और आप लोग इस पर अमल करना, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे आपको भी। अगर आपको पता चले कि भाई फलाना आदमी ने, मिसाल के तौर पर जैद आपका दोस्त है, जैद ने अपने बहनों की विरासत नहीं दी, भाइयों की विरासत नहीं दी, एक है वो कोशिश कर रहा, मकान नहीं बिक रहा, होता है कभी बरसों लग जाते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहा, लेकिन एक आदमी है कोशिश ही नहीं, देना ही नहीं है, मुनकर है, मुनकर की बात कर रहा हूं, जैद है आपका दोस्त है, बड़ा अच्छा यार है, या आपका सगा रिश्तेदार है, अब जनाबे वाला उसके घर जाकर कभी खाना पीना भी नहीं, उसके घर जाकर खाना पीना भी नहीं, मिलना मिला ना, पता ताल्लुक जायज नहीं, लेकिन अगर इसके जरिए से उसको दीन पे लाना मकसूद हो कि भाई हम भी तुमसे नाराज हैं कि तुम अल्लाह का हुक्म मान, बहनों को हक नहीं दे रहे, भाइयों को हक नहीं दे रहे, तो ये नहीं करना कि जनाब दोस्त है ना यार तो क्या करें, वो उसका मामला है, उसका मामला नहीं, तुम भी पकड़े जाओगे कि तुम मौलवी साहब थे तो मैं उसको हक पर लेकर आना चाहिए था, नहीं आ रहा था तो तुम खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालिफत करते कि भाई तुम्हारे साथ खाना पीने को मैं जायज ही नहीं समझता, कि तुम तो पैसे मारकर, बहनों का हक मारकर, छोटे भाइयों का हक मारकर जनाब क्या कर रहे हो। ऐसा कई जगह होगा आप देखेंगे तो आएगा मस्जिद में 1 लाख रुपए दे देगा, भाई ये तुम जो मस्जिद में 1 लाख रुपए दे रहे हो ये आप विरासत का मामला है, आप दे ही नहीं सकते, आप दे ही नहीं सकते। यहां पर हमारे एक दोस्त है, उनका इंतकाल हो गया, पेशावर में रहते थे, तो सैयद एक घराना था, उसके लिए 10,000 रुपए भेजते थे हर महीने। कोरोना हुआ अचानक, 42 साल की उम्र थी, ज्यादा नहीं, इंतकाल हुआ, 10,000 रुपए उनके अकाउंट से उन्होंने अपने कैशियर को कह रखा था, उन्होंने भेजे। मेरा जब आया मेरे पास, मैंने फौरन उनके घर में बड़े भाई से रब्ता किया, मैंने कहा भाई पहले तो वो हयात थे वो भेजते थे, अब ये जो है ना 10,000 रुपए जो आए हैं अकाउंट तो उन्हीं का है, लेकिन अब तो इनके बच्चों का हक हो गया ना, अब तो इनकी बीवी का हक हो गया, और अभी बच्चे नाबालिग हैं, देने ही जायज नहीं है, तो मैंने वो पैसे अल्हम्दुलिल्लाह उनको अकाउंट में वापस भिजवाए, और फिर उन्होंने कैशियर को मना किया कि भाई अब आप हड़पते रहो, हड़पते हमें क्या यार भेजने, हड़पते रहो कितना हड़पोगे भाई, कब तक खाओगे मेरे भाई, हिसाब किताब कहां से देंगे हम, एक चवन्नी का हिसाब कहां से दूंगा मैं। तो मामलात मेरे प्यारे, पैसा आता ना आजमाइश आती, 1 लाख रुपए रखे हैं तभी तो बदलता, अल्लाह की मोहब्बत है कि दुनिया की मोहब्बत, फिर पता चलता है। तो मामलात बिल्कुल सीधे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दोस्त खानखा में आते हैं, ताल्लुक है मुझसे, मुझे अभी 3-4 दिन पहले, कल बयान भी मैंने बताया, कहने लगे कि हमारे सैलरी कटती है ना, जैसे छुट्टी की 1-2 दिन छुट्टी की तो सैलरी कट जाती है, उनकी तनख्वाह कटती है। मेरे जब वो बना पूरा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने महीने में 1 छुट्टी की, हालांकि मैंने महीने में 3 छुट्टियां की। मैं वो पेपर लेकर HR डिपार्टमेंट में चला गया और कहा कि भाई मैं 1 छुट्टी नहीं की है, आप अपने पास ये रिकॉर्ड सही करें, मैंने 3 छुट्टियां की। तो HR वाला जो मैनेजर था खड़े होकर गले लग गया कि यार आप ये तो कोई बताते ही नहीं है, आप तो अपनी तनख्वाह को खुद कटवाने आ गए, और जबकि गलती तो हमारी हो रही है ना कि हमने आपकी 3 छुट्टियों को 1 छुट्टी लिखा हुआ है। आप जो छोड़ो यार, इनकी गलती है मैं क्या करूं, लेकिन 2 दिन की जो तनख्वाह आती वो क्या होती भाई, हराम की तनख्वाह होती, और कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं है, 42,000 रुपए तनख्वाह है, 42,000 वाला सोचता है यार मैं दो दिन की तनख्वाह कटवा दूंगा तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, छोड़ो भी, मैंने थोड़ी कहा है, वो तो खुद दे रहे ना। शैतान आके तावीलात कराता है। आप मदरसों में पढ़ाएंगे 8 बजे का टाइम है, 8:05 पे पहुंच रहे, 12 बजे तक का टाइम है, 11:30 बजे मदरसे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मोहतरम साहब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा। हाँ, ये जो आधा घंटा आपने चोरी की, 5 मिनट चोरी की, उस्ताद की चोरी ये है कि जनाब घंटे में देर से जा रहा है, ये भी आप कल को उस्ताद बनेंगे, ये चोरियां हैं, जाके वक्त को जाया कर रहे हैं, ये चोरी है, ये जायज नहीं है कि आप तनख्वाह भी उठा रहे हैं और जनाब वाला तलबा का वक्त भी जाया हो रहा है और 8 बजे का वक्त आप 8:05 पे पहुंच रहे हैं। क्यों भाई? पहले पहुंचे वक्त से पहले, ताकि तालिबे इल्म को ये रहे कि उस्ताद पहले मौजूद हूं। भाई कभी हो जाता है, आंख लग गई, खुदा ना खास्ता पेट खराब हो गया, खुदा ना खास्ता कोई अचानक कोई हादसा पेश आ गया, कोई गाड़ी पंक्चर हो गई, कभी की बात तो एक अलहदा है, कभी की बात तो एक अलहदा है, लेकिन रोजाना का मामूल बना दिया, मिजाज ही बना दिया। हमारे अकाबिर अपनी तनख्वाह खुद कटवाया करते थे और आज तो बस यार सरफे नजर हो जाए तो अच्छा है। मेरे अजीज अपनी नमाज को दुरुस्त करो, अगर नमाज दुरुस्त होगी दीन दुरुस्त होगा, दीन दुरुस्त होगा दीन दुनिया सुख समर जाएगी, क्योंकि दीन किस चीज का नाम है? दुनिया में जीने के ढंग का नाम है, बस दुनिया में जीने का ढंग, इसको दीन कहते हैं। नबी के तरीके पर जियोगे बस यही दीन है। भाई आपको जिंदगी में मामला क्या पेश आते हैं, पढ़ाई के कौन से तरीका इख्तियार करना है? अल्लाह के नबी का तरीका इख्तियार करना, ठीक है। फिर आपका बड़े हो जाएंगे, फिर आपका कारोबार या नौकरी के दीन, ठीक, शादी दीन, बच्चे होंगे दीन, उनकी तरबियत दीन, हाँ शादी ब्याह उनकी होगी दीन, फौदगी होगी दीन, हमारी जिंदगी कहीं दीन से बाहर है? हर अमर के अंदर हमारी दीन रहनुमाई कर रहा है। तो लिहाजा अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, फिक्र करें, और इससे बड़ा इत्मीनान होके बैठे हुए हम तो खान खान है बस, ठीक है जन्नत तो आ गई है सीधे, ऐसे नहीं मिलती भाई, इसके लिए रगड़ा लगवाना पड़ता है, फिक्र करनी पड़ती है। अल्लाह जी हम सबको ये फिक्र आखिरत नसीब फरमाए। अभी आप सबको एक फिक्र है ना भाई, इम्तिहान की फिक्र है भाई, इम्तिहान में बहुत ज्यादा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई नाकाम हो गया तो क्या नुकसान हुआ? एक साल जाया हो गया, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आखिरत के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो मैं सब कुछ ही बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद। अल्लाह ताला हमें किसी भी दुनिया का इम्तिहान हो या आखिरत का इम्तिहान हो कभी नाकाम ना करे, अल्लाह से आला दर्जे की कामयाबी मांगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अल्लाह वाली मोहब्बत हम सबके आपस की नसीब फरमा दे, और अल्लाह ताला हम सबको जस फरमा कर औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सदक तक पहुंचा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वक्त कम रह गया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नत की दुआ पढ़ लें और अपने अपनी प्यालियां खुद वहां पहुंचा कर दें, ये तरबियत का हिस्सा है। आप छोड़ के उठे मालूम हुआ तरबियत नहीं हो रही, अपनी अपनी प्यालियां या एक साथी 2-3 की ले ले और उधर रख के जाए, ताकि खुदाम को हमारी खिदमत, हम भी तो उनकी खिदमत करें ना, ठीक है, उनके लिए सहूलत। अभी यहाँ पे कोई एक दुनिया का आदमी हो, आप सब उठे और प्याली अपनी अपनी जगह पर हो, बताएं वो क्या कहेगा कि इनकी तरबियत नहीं हुई? ये नहीं कहेगा, वो कहेगा इस खानखा में आने के बावजूद इनकी तरबियत नहीं, आपके बड़ों की बदनामी, क्या इनके माँ बाप ने इनको तमीज नहीं सिखाई, हाँ इनके मदरसे में इनको तमीज नहीं सिखाई गई, इनके खानखा में इनको तमीज नहीं सिखाई। तो बड़ों की तरफ निस्बत होती है हमारी किसी भी जो है ना बदबख्ती की, हमारी किसी भी बेअदबी की। इसलिए अपने अमाल पर गौर किया करो कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमाल की वजह से हमारे बड़ों की बदनामी का जरिया बने। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना आज आपको देर हो गई।